Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी एक अजूबा है, एक ऐसा सपना है जिसे हम कभी उठना ही नहीं चाहते, एक ऐसा ख्वाब है जिसे हम हर वक्त पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसे पूरे करने के चक्कर में हम कई बार हताश हो जाते हैं। हम जिंदगी में भूल जाते हैं कि जिंदगी हमें एक तोहफे के रूप में मिली है। आज हम जानेंगे कि जिंदगी एक मिरेकल है, एक ऐसा मिरेकल जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके चिन्मय भाई जी, जो कि एक पायलट है और साथ ही साथ एक ड्रीम एक्टिविस्ट भी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू, ओम शांति।
ब्रदर, हमारी पूरी जर्नी चल रही है कि किस तरह से हम अपनी मिरेकल अर्थात अपनी जिंदगी को मिरेकल से भर सकते हैं। हमने जाना कि जो फर्स्ट स्टेप था कि हमें ग्रेटफुल रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अर्थात शुक्रगुजार होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इसके बाद हम ऐसा क्या करें जिससे वो मिरेकल और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए।
फर्स्ट स्टेप, जैसा आपने कहा कि ब्यूटीफुल स्टेप है, वो है अप्रिसिएशन।
जी,
और जब अप्रिसिएशन बूम हम करते हैं तब नई चीज़ों को निमंत्रण देते हैं।
जी,
राइट। अभी सेकेंड स्टेप है एटॉमिक विजन। इसका मतलब क्या कि जो भी मैं पाना चाहता हूं उसका एंड रिजल्ट विजन मेरे मन में हो। राइट। हमारा मन जो है, जैसे भी हमने पहले भी ये बात की थी कि हमारा मन जो है वो पिक्चर की लैंग्वेज जानता है।
Correct.
वो जो हम बोलते हैं वो लैंग्वेज शायद से कम जानता है, पर सबसे ज्यादा उसको पिक्चर्स की लैंग्वेज पसंद है। तो हम अपने माइंड को वो एंड रिजल्ट दें और देखें वो विजन को। बाइबल में भी कहा है कि अ मैन विदाउट विजन शैल पेरिश। मतलब कि जिसको भी खुद के भविष्य का विजन नहीं है, वो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को मतलब एक सुन सा बना देगा। राइट। एंड आई थिंक दैट्स द रीजन कि हमें ये माइंड की फैकल्टी परमात्मा ने दी है। इंसान एक ही है जो ये विजन क्रिएट कर सकता है और उसको रियालिटी में बदल सकता है।
जी,
राइट। जैसे कोई शिप को, जहाज को बनाना है या एरोप्लेन को बनाना है, तो सबसे पहले उस इंसान के माइंड में वो विजन आता है। राइट। और फिर वो एक उस चीज को कॉन्सेप्ट बनाता है, कॉन्सेप्चुलाइज करता है और फिर रियलिटी में आता है। तो हम भी क्यों ना अपने लाइफ का एंड रिजल्ट जो हम चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सक्सेसफुल स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो मैं वो विजन अपने माइंड में लाता हूँ कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ और वहाँ पे बहुत सारे लोग, जो भी मैं उनके साथ शेयर करता हूँ उससे इन्फ्लुएंस होकर और उससे कुछ इंस्पायर होकर उनका जीवन बदल रहा हूँ। राइट। वो एंड रिजल्ट मेरे मन में है। राइट। तो फिर मुझे एक, जो मैं अपने माइंड को एक क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ कि इस दिशा में काम करना है। और माइंड जो है, अगर उसको हम दिशा नहीं देते तो उसकी दशा एकदम पत्थर सी हो जाती है। वो सोचने लगता कि अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। राइट। वो कंफ्यूज हो जाता है। पर जब उसको एक दिशा मिल जाती है, एक वे मिल जाता है, तब क्या होता है कि वो उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो बहुत ही जरूरी है कि मैं अपना एंड रिजल्ट, उसको पिक्चर मेरे मन में लाऊं। जब मुझे पायलट बनना था तब मैंने ये विजन, ये एक बहुत ही क्लियर विजन पिक्चर मेरे मन में रखा था कि मैं एक छोटा सा एयरप्लेन उड़ा रहा हूँ और साथ में पीछे मेरा परिवार बैठा है, मेरे माता पिता और मेरी बहन, और मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ। यही मैं विजन देखता था। और उस विजन को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैं एक छोटा सा ब्यूटीफुल म्यूजिकल पीस प्ले करता था। और जब भी वो म्यूजिकल पीस मैं प्ले करता था तो मैं उस अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता था कि जैसे वो विजन एकदम रियलिटी में बदल रहा है। राइट। वो रियल हो रहा है, वो रियल हो रहा है। राइट। उस दिशा में जा रहा था। तो जब उस स्टेट में मैं जाता था तो मेरे इमोशंस भी उस स्टेट में चले जाते थे. मैं हैप्पी फील करता था, मैं एकदम ब्लिसफुल फील करता था. एक आनंद का जो एक इमोशन होता है वो फील करता था. और जब वो फीलिंग में आता था तब मुझे ऑटोमेटिक, जब मैं वो विजुअलाइजेशन करके फिर डे टू डे एक्टिविटीज करता था, तो मुझे, मेरी सोच का जो डोमिनेंट थॉट प्रोसेस था वो ये था कि मैं अभी इस विजन को पूरा करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूँ.
आई थिंक दिस इज सो ब्यूटिफुल ब्रदर. इसी से मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब हम तैरते हैं, जब हम तैरना सीखते हैं, तब हम हाथ पैर बहुत मारते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद मैं डूब जाऊंगी. और वो डर इतना ज्यादा होता है कि अगर मुझे कोच बोल भी रहा होता है कि अरे पापा तुम ऐसे करोगे तो तुम सच में डूब जाओगी, अपने आप को छोड़ दो, अपने आप को लेट गो कर दो, अपने आप को हल्का कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप फ्लोट करने लगोगे. पर वो फीलिंग इतनी डरावनी होती है लेट गो करने की कि हम तैरना नहीं सीख पाते. जिस मोमेंट हम लेट गो कर देते हैं, अपने आप को पानी में छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम तैरना सीख जाते हैं.
सो ट्रू.
तो ये इस एग्जांपल को हम किस तरह से हमारे पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हैं?
द फर्स्ट थिंग इज की सबमिशन, जैसे आपने कहा
जी
कि सबमिट कर दो अपने विजन के लिए, राइट? तो वो भी स्टेप हम आगे लेंगे कि कैसे उस चीज को इतना फेथफुल बन जाए हम कि फिर वो अंत में सबमिट ही कर दें, राइट? और फिर ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ फ्लोट करती रहे, राइट? इस विजन को अगर मैं रियलिटी में बदलना चाहता हूँ तो फर्स्ट स्टेप मैंने कहा कि एटॉमिक विजन, मतलब डिटेल्ड में मुझे पता होना चाहिए. मुझे ये पता था कि कौन से कलर का प्लेन था, मैंने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, मेरे आसपास में कौन सा वातावरण था, कैसी हरियाली थी, और सब एकदम मतलब कलरफुल विजन, ऐसा वेग नहीं, क्योंकि जितने कलर्स हो उतना माइंड को एक्साइटिंग लगता है, राइट? उतना ही मैं माइंड को स्टिम्युलेट करता हूँ. तो ये कलरफुल विजन मैं देखूं और उस डिटेल्स को, जो भी मैंने डिटेल, एटॉमिक डिटेल जिसे मैं कहता हूँ, उस डिटेल्स को मैं पेन विजन करूँ, मतलब लिखूँ.
अच्छा.
जो भी मैं चाहता हूँ, पहले तो एटॉमिक विजन देन पेन विजन, ओके? तो दोनों चीज अगर मैं करता हूँ तो मैं अपने आप को अफर्म करता हूँ, अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाता हूँ उस मिशन को, उस विजन की ओर जाने के लिए. क्योंकि मैं जब कुछ सोचता हूँ तो उसकी एक लेवल की एनर्जी होती है, पर जब मैं लिखता हूँ तो वो एनर्जी 10 times, 50 times, 100 times पावरफुल होती जाती है. जैसे मैं क्लैरिटी से लिखने लगता हूँ, राइट? और मैं खुद भी कमिट करने लगता हूँ खुद को कि नहीं, ये होना ही है, ये होना ही है. और ज्यादा मानने लगता हूँ, वो बिलीफ मेरे में बिल्ट अप होने लगती है.
आई थिंक आप जब ये बोल रहे हैं कि हमें लिखने की जरूरत है कि हमें क्या एग्जैक्टली चाहिए, कई बार ऐसा होता है ब्रदर कि हम क्लियर तो होते हैं अपने विजन को देखने के लिए, कई बार मेरे सामने क्लैरिटी भी बहुत होती है उस चीज को लेकर के, लेकिन बिलीवेबिलिटी की कमी होती है. विजन मेरे आके सामने बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा गोल क्या है, उसके कलर्स जैसे आपने कहा उसके बारे में सब कुछ है, लेकिन वो एक सपना लगता है, रियलिटी नहीं लगता. ऐसे सिचुएशन में पेन डाउन करना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करती उस चीज को कि वो सच में हो सकता है. इधर इस टक बिहेवियर से बाहर कैसे निकले?
इसके लिए मुझे सबसे पहले तो अपनी वोकैबुलरी जो है उसको चेंज करना पड़ेगा.
ओके.
इसका मतलब क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ, राइट, वो हर एक शब्द के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंगर फील करता हूँ तो कोई उसको एंगर कहता है, कोई उसको कहता है कि मैं स्लाइटली अपसेट हूँ. सेम चीज, पर एंगर डिफरेंट इमोशन पैदा करता है, स्लाइटली अपसेट वो थोड़ा सा माइल्ड इमोशन पैदा करता है, राइट?
ट्रू.
कोई कहता है कि आज मैं डिप्रेस्ड हूँ और कोई कहता है कि आज मेरा थोड़ा सा थॉट साइकिल नेगेटिव है, थोड़ा सा. तो दोनों में, दोनों चीज एक ही कह रहे हैं, पर उसके साथ डिप्रेशन के साथ इमोशन बहुत स्ट्रांग है, स्लाइटली नेगेटिव थॉट साइकिल थोड़ा सा अलग है, राइट? कोई कहता है आज मैं हैप्पी हूँ और कोई कहता है आज मैं ब्लिसफुल हूँ, राइट? तो सेम चीज और हैप्पीनेस और ब्लिसफुल दोनों चीज, अब दोनों जो शब्द है उसके साथ जो इमोशन है उसको मैं इंटेंसिफाई करता हूँ. तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे वर्ड्स जो है वो मेरे थॉट्स के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं, राइट? क्योंकि वर्ड्स में बहुत ताकत है. जैसे मैं छोटा था तो यहाँ पे एक सेल्फ एस्टीम सिखाया जाता था, स्वमान जिसे कहते हैं, कि ये सोचो कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मतलब परमात्मा सर्वशक्तिवान है और तुम परमात्मा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो. और जब मैं ये सुनता था तो उसके साथ जो फीलिंग जो मिलती थी शब्द के साथ वो कितनी मतलब एम्पावरिंग फीलिंग थी, राइट? सो मुझे क्या करना है कि दिस एम्पावरिंग वोकैबुलरी से एम्पावरिंग वोकैबुलरी बनानी है, राइट?
ओके.
और जो भी चीज़ शायद मेरे जीवन में कोई चीज़ अच्छे से नहीं भी हो रही, फॉर एग्जाम्पल कोई परिस्थिति आ गई तो कोई इस परिस्थिति को एक बिग प्रॉब्लम का वर्ड देता है,
करेक्ट?
और एक आदमी उस परिस्थिति को एज अ पॉजिटिव चैलेंज का वर्ड देता है. सेम परिस्थिति पर दो डिफरेंट इमोशंस, राइट? तो मुझे अपनी वोकैबुलरी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की मैंने नोटिस किया है कि एक सक्सेसफुल वोकैबुलरी होती है.
ओके.
और जो लोग हमेशा फेलियर महसूस करते हैं उनकी भी एक वोकैबुलरी होती है.
ओके.
और दोनों के बीच का अंतर मैं अगर ढूंढ लूं और मैं अगर ये सक्सेसफुल लोगों की वोकैबुलरी जान लूं तो फिर जो मेरा प्रोसेस है वो मेरे थॉट्स के साथ मैच होगा. और मेरी वोकैबुलरी जब मैच होगी मेरे थॉट्स के साथ और मेरे मन के इमोशंस के साथ, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं और ज्यादा उसको बिलीव करने लगूंगा.
ओके.
दिस इज पॉसिबल, दिस इज हैपनिंग, ये मैंने करके मैंने पास्ट में भी किया था क्योंकि मैंने अप्रिशिएट किया, राइट?
करेक्ट.
तो मैंने पास्ट में भी किया था, अभी मैं कर रहा हूँ और आगे भी होगा.
ओके. क्या हम अपने आप को अश्योरिटी देते हैं जब हम किसी चीज को बिलीव करते हैं, चाहे हम किसी व्यक्ति पर भी बिलीव करते हैं या कभी सिचुएशन पे, कभी खुद पर बिलीव करते हैं, कभी ईश्वर पर बिलीव करते हैं? बेसिकली जब भी हम बिलीव करते हैं किसी चीज पर, तो क्या हम अपनी अश्योरिटी उसे सौंपते हैं कि अब ये चीज जरूर होगी ही होगी, ये किस हद तक जरूरी है? तो बेसिकली अपने बिलीफ के साथ में अश्योरिटी होना कितना ज्यादा आवश्यक है.
एब्सोल्युटली. जैसे हमने बिलीव के जो एपिसोड थे उसमें हमने बात की कि किसी भी बिलीव को बिल्ड करना है तो उसके नीचे हमें पिलर्स रखने हैं, राइट? तो जब मैं एक पिलर रखता हूँ कि चलो ये बिलीफ मेरी है कि मेरा ये ड्रीम पॉसिबल होना ही है, तो उसके लिए पिलर क्या है? तो फर्स्ट पिलर इज कि खुद खुदा मेरा साथ दे रहा है,
करेक्ट?
तो मेरा साथ अगर भगवान दे रहा है तो फिर उस चीज को पॉसिबल होना ही होना है. ओके. सेकेंड, इसकी मैंने पास्ट में भी ये अचीव किया था, बहुत कुछ मैंने अभी परमात्मा से और इस यूनिवर्स से पाया है, तो अभी जब मैंने पास्ट में पाया है तो प्रेजेंट में पाना पॉसिबल है ही है, राइट? सेकंड पिलर. थर्ड पिलर कि मेरे आसपास का वातावरण, मेरे आसपास के लोग, मेरे आसपास के मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, वो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं. मैंने जब मैंने उनसे कम्युनिकेट किया, मेरे ड्रीम के बारे में बात की, जिस भी पॉजिटिव लोगों के साथ मैंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, तो वो भी मेरे को सपोर्ट दे रहे, तो उनका भी एक पिलर है मेरे पास. फोर्थ थिंग इज कि मैंने जो भी अच्छा बीज बोए हैं, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, जो भी अच्छे बीज बोए हैं उसका फल अच्छा कभी ना कभी तो मुझे मिलना ही है, राइट? तो जब मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो वो उस भगवान के हाथ में अगर मैं सौंप देता हूँ कि मैंने अच्छे कर्म किए और मैं अभी उसका रिजल्ट आपके हाथ में सौंप देता हूँ, तो फिर वो भी अच्छा रिजल्ट मुझे मिलना ही है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक दो नहीं पर न्यूमरस बीज बोए हैं. तो उस बिलीफ को मैं जब पिलर्स देता जाता हूँ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अफर्म जैसे करता जाता हूँ, तो वो अगेन ज्यादा मेरे को स्ट्रॉन्गर ही स्ट्रॉन्गर बनाती जाती है.
दिस इज सो ट्रू ब्रदर. आई थिंक हमने इस बात को अभी प्रूव कर दिया है कि किस तरह से हमारा जो विजन है वही हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में लाता है. अब मैं जानना चाहती हूँ कि कई बार हमारा जो ड्रीम होता है या हमारा जो गोल होता है वो पॉजिटिव नहीं होता, अर्थात गोल ही नेगेटिव है. कई बार हम सपोज किसी व्यक्ति को हम खुद की सक्सेस से ज्यादा दूसरे की फेलियर में इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे किस तरह से इस व्यक्ति को नीचे लाना है, तो ये गोल ही गलत है। तो जो आप तरीके बता रहे हैं, क्योंकि ये गलत मैसेज ना जाए लोगों को कि हम पॉजिटिव गोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब नेगेटिव गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा इंटेंशन ही गलत होता है। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है?
जिन लोगों का इंटेंशन गलत होता है, मेरा ये मानना है कि इंटेंशन शायद सही होता है पर बिहेवियर गलत होता है, राइट? कि वो इंटेंशन ये चाहते हैं कि दूसरों को नीचे गिरा के मुझे खुशी मिले, राइट? तो उनका इंटेंशन है कि मुझे खुशी मिले, जो गलत नहीं है, पर उनका बिहेवियर जो है दूसरों को नीचे गिराना, वो गलत है, राइट? तो उनको ये समझना है कि खुशी का सिर्फ एक ही सोर्स है उनके पास, दूसरों को नीचे गिराना। तो कभी ना कभी जब वो नीचे गिरा देंगे तो वो सोर्स उनका खत्म हो जाएगा, राइट? फिर उनको दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ेगा और वो डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों के ऊपर परमानेंटली। और जब परमानेंटली आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो तो क्या आप खुश रह सकते हो?
बिल्कुल
नॉट रियली, राइट?
नॉट रियली।
तो उनको ये जानना चाहिए कि खुशी मेरे अंदर से मुझे कब मिले, मुझे अंदर से फुलफिलमेंट, अंदर से हैप्पीनेस, ब्लिस, पीस अंदर से कैसे मिले, राइट? ना कि किसी को नीचे गिराकर। और मैं ऐसा बिहेवियर कैसे करूं जिससे जो मेरी इननेट नीड्स हैं सोल की, राइट, वो मैं ऑटोमेटिकली फुलफिल कर सकूं।
ओके,
राइट?
या ब्रदर, अब मैं पूछना चाहती हूं कि ये सवाल हमेशा से मेरे मन में था कि जब हम किसी गोल की बात करते हैं, आज हम डील कर रहे हैं कि किस तरह से मिरेकल्स क्रिएट होते हैं, लेकिन कई बार हमारी जो मंजिल होती है वो किसी चीज को या किसी व्यक्ति को या किसी वैभव को पोजेस करने की होती है, अर्थात वो पूरी तरह से मेरी बन जाए, चाहे वो कोई चीज हो या किसी व्यक्ति से। कई बार हम इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम उसे कंप्लीटली अपनी जिंदगी में खींचना चाहते हैं। ये जो टेक्निक है हमारी, क्या ये उन व्यक्तियों को हेल्प करेगी? क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसा हो, मेरा इंटेंशन ये है कि हर व्यक्ति की अपनी जर्नी क्रिएट हो और वो उस जर्नी में सक्सेसफुल हो। आपका क्या कहना है?
जैसे मेरी एक जर्नी है, वैसे हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल जर्नी होती है, राइट? उनके भी कुछ ड्रीम्स या गोल्स होते हैं, और अगर मैं उस व्यक्ति को या उस फॉर एग्जाम्पल किसी एक व्यक्ति के पीछे में पॉजेसिव, ओवर पॉजेसिव हो जाऊं और ये मैं सोचूं कि वो व्यक्ति हमेशा मेरे बारे में ही सोचे या फिर मेरा हो जाए हमेशा के लिए, तो मैं उसकी जो खुद की जर्नी है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता और मैं मैच्योर नहीं हो रहा उस चीज़ को या उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट देने के लिए, राइट? कि उसकी भी जर्नी है और उसकी भी खुद की चॉइसेस है, उसकी भी ड्रीम्स है, उसके भी गोल्स है, जो हो सकते हैं मेरी अलाइनमेंट में ना हो, राइट? तो अगर मैं किसी एक बात के पीछे इतना पड़ जाऊं और फिर जब वो मुझे ना मिले तो मैं ये सोचूं कि पूरा यूनिवर्स मेरे खिलाफ है, तो ये एक गलती मेरी है क्योंकि मैंने ये सोच के मैंने दूसरे के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सोचा, राइट? सिर्फ अपने बारे में मैं जब सोचता हूं तो मैं सेल्फ सेंटर्ड हो जाता हूं, और जब मैं सेल्फ सेंटर्ड होता हो जाता हूं तो सिर्फ मुझे गलतियां ही और गलती गलत चीज ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोकस था वो इनवर्ड हो गया, आउटवर्ड की जगह, राइट? और मेरा पर्पस से मैं दूर हो गया। पर्पस क्या था? कि लोगों को खुशी बांटना, राइट? किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि आई एम हियर ऑन दिस अर्थ टू गिव, टू हेल्प अदर्स, राइट? व्हाट अदर्स आर हियर फॉर, आई हैव नो आइडिया, राइट? इसका मतलब कि मैं यहां पे हूं दूसरों की मदद करनी है, करने के लिए, सिर्फ मुझे ये पता है। दूसरे लोग यहां पे क्यों हैं वो मुझे नहीं पता,
और right? मुझे पता करना भी नहीं चाहिए।
एग्जैक्टली
exactly. उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए।
एग्जैक्टली
exactly. बिल्कुल आपने ठीक कहा ब्रदर। आई थिंक ये जो हमने थॉट जिससे हम आज एपिसोड एंड कर रहे हैं, ये बहुत ही अवेकनिंग थॉट है कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है। अगर हम इस बात को समझ जाए, ये इतना डीप थॉट है कि इससे आई थिंक 90% ऑफ आर प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे।
ट्रू।
इससे हम चीजों से, व्यक्तियों से, सिचुएशन से इन सबसे डिटैच हो जाएंगे। एंड आई थिंक डिटैचमेंट एक ऐसी चाबी है जिससे आप अपनी मंजिल के और करीब आ जाएंगे।
एब्सोल्युटली।
थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल टाइम। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से डिटैचमेंट हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमने जाना कि अगर हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, मिरेकल क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस तरह से एक पेन और एक पेपर आपका एक ऐसा जरिया बन सकता है जिससे आप अपनी गोल के और करीब आ सकते हैं। ये पेन और ये पेपर आपको हेल्प करेगा अपनी थॉट्स को लिखने में। जब आप लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और आप और ज़्यादा क्लियर हो पाते हैं अपने विजन को लेकर के, और वही आपको हेल्प करेगा आपकी मंजिल की ओर आगे बढ़ने में। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।